आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
गुड मॉर्निंग, 15 जनवरी है आज, दिन है शुक्रवार और मेरा नाम है अमन गुप्ता। लेकर हाजिर हूँ देश का पहला मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन, और अगले 30 मिनटों में दुनिया भर की तमाम खबरें आपको बताऊंगा, साथ ही कुछ खबरों का एनालिसिस भी करेंगे। तो बताता हूँ कौन सी खबरें होंगी वो। तो किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। तो इस कमेटी का आगे क्या होगा, और तमिलनाडु में क्यों बड़े बड़े नेता जुट रहे हैं इस बार, वहां शुरू हुई पोंगल पॉलिटिक्स क्या है, और सियाम के अनुसार ऑटो इंडस्ट्री में पिछला साल कैसा रहा ये भी जानेंगे, और साथ में देश विदेश के अखबारों से सुर्खियों के अलावा आज का इतिहास भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए प्रतीक बाघमारे से।
गुड मॉर्निंग अमन, आज की टॉप हेडलाइंस है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने नई दिल्ली स्थित अपने हेडक्वार्टर्स में तलाशी की है। सीबीआई को अपने ही कुछ अधिकारियों, जिसमें दो डीएसपी भी शामिल हैं, उन पर रिश्वत लेने का शक है। सीबीआई को शक है कि इन अधिकारियों ने बैंक फ्रॉड के आरोपी से घूस ली है। सीबीआई दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। तमिलनाडु दौरे के बाद आज दिल्ली में राहुल गांधी आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में किसान अधिकार दिवस का नेतृत्व करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में गवर्नर हाउस तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। राहुल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारत में सैकड़ों की संख्या में लोन ऐप की समीक्षा की है और इनमें से कई को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। प्रयोगकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों ने कंपनी से इन ऐप को लेकर चिंता जताई थी। गूगल ने कहा कि जो ऐप उपयोगिता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन कर रही थी, उन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी कल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, जिसके मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस कार्यक्रम से सभी राज्यों के 3006 स्थान डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे और हर केंद्र पर 100 लाभार्थियों का टीकाकरण होगा। बांग्लादेश ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के हालिया बयान को लेकर बड़ा एतराज जताया है, जिन्होंने बांग्लादेश को आतंकवादी संगठन अलकायदा का संभावित गढ़ बताया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पोम्पियो की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार बताया है। साथ ही अमेरिका को हिदायत दी कि वो बिना सबूतों के ऐसे आरोप ना लगाए। दिसंबर में सब्जियों, खाने पीने की वस्तुओं के दाम कम होने से थोक महंगाई दर में कमी आई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आंकड़े जारी किए हैं। दिसंबर में होल प्राइस इंडेक्स पर आधारित इन्फ्लेशन रेट 1.22% रही, नवंबर के महीने में ये 1.55% पर थी। और सिडनी में शानदार जज्बा दिखाने के बाद टीम इंडिया गाबा में अंतिम टेस्ट मैच खेलना शुरू कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मैच भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से शुरू हो चुका है।
ये सुबह का खबरनामा आज का दिन है और मेरा नाम है अमन गुप्ता। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। आज सरकार और किसानों के बीच एक बैठक तय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बाद आगे की बैठकों का क्या होगा, इसे लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। उम्मीद है ज्यों ज्यों सूरज चमकेगा, धुंध छटेगी, बैठक को लेकर संशय भी दूर होगा। लेकिन इस बीच कल भूपिंदर सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी से खुद को अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए ये कमेटी बनाई थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं भूपिंदर सिंह मान, वो इस कमेटी में थे। जब से कमेटी बनी है तब से ही लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। किसानों का कहना है कि इस कमेटी में वही लोग हैं जो पहले से किसानों के विरोध में थे। किसान ये भी कहते आ रहे हैं कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो ऐसे में आगे क्या भविष्य नजर आ रहा है इस कमेटी का, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से।
देखिए, अगर कहा जाए तो फार्म बिल के मामले पे सरकार और किसान यूनियनों के बीच में एक शह और मात का गेम चल रहा है। इस खेल में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, एक तरफ तो लगा कि सरकार को सेटबैक हुआ है, धक्का लगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई, और उसके अलावा जो कमेटी बनाई उसको लेकर के किसानों में नाराजगी ये रही कि उसमें चारों ऐसे लोग हैं जो कि इस बिल के फेवर में किसी ना किसी समय बोल चुके हैं या उनका स्टैंड रहा है बिल के फेवर में, कानूनों के फेवर में। इसको लेकर के लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसान थोड़े फंस गए हैं, किसान यूनियन फंस गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, अगर उसको भी वो पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं तो ये धारणा बनेगी कि किसान जो है बहुत ही अड़ियल रवैया अपना रहे हैं और वो ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, वो किसी से किसी और चीज पे बात करने को तैयार नहीं, सिर्फ अपनी मनमानी चाहते हैं। लेकिन इस कमेटी से मान साहब के हटने से एक चीज जो तय हुई है कि किसान जो अभी तक थोड़े फंसे हुए लग रहे थे उनकी बाहें खुल गई हैं। क्यों? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को दोबारा तय करना होगा कि नेता इसमें कौन नेता दिया जाए। देखिए, बीकेयू इस समिति की अकेली ऐसी यूनियन थी जो कि एक्टिवली दिल्ली के दरवाजे पे विरोध में शामिल है। शेतकारी संगठन का उतना फुटप्रिंट इस प्रोटेस्ट में नहीं है, इसलिए बीकेयू के मान साहब का हट जाना एक तरह से ये हो गया है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर किसान, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में नहीं है। अब क्या होगा कि समिति को सुप्रीम कोर्ट को दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाना होगा, उन्हें समिति के लिए एक और आदमी ढूंढना होगा और उसमें समय लगेगा। अभी तय ये हुआ था कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसके 10 दिन के अंदर समिति अपना काम शुरू करेगी, 8 हफ्ते में रिपोर्ट दे देगी, लेकिन अब ये मामला डिले हो जाएगा। दूसरा एक इसमें किसानों को फायदा हुआ कि अभी तक समिति के कारण एक उनकी नेगोशिएशन पावर जो थी सरकार से अपनी बात बनवाने की, वो कम होती दिख रही थी। समिति से अलग हो जाने के कारण अगर समिति ही डावाडोल हो गई है तो किसानों की बार्गेनिंग पावर सरकार के साथ बेहतर हो जाती है।
राहुल जी, आज एक बातचीत पहले से तय है सरकार और किसान के बीच, वो क्या अभी ऑन टेबल है, वहां से क्या डेवलपमेंट्स हैं?
देखिए, किसान अपनी तरफ से उनको तय करना है कि वो आगे किस तरफ जाएंगे, क्योंकि एक बात जो देखी, सरकार ने देखा कि 8 राउंड की बातचीत के बाद जब मामला आगे नहीं बढ़ रहा तो उसने सोचा कि क्यों ना जो ये परेशानी हमारे सर है इसको सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे डाल दें। तो उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, उससे ये लगने लगा था कि मामला अगर कहीं आगे बिगड़ा या सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट और किसानों के बीच में होगा। ये सरकार के लिए थोड़ा सा रिलीफ का सबब था, उनको थोड़ा सा इससे उनका बोझ कम होता दिख रहा था। किसान चाहते हैं कि वो बातचीत सरकार से ही हो, सरकार ने बिल बनाए हैं, सरकार ही वापस करे। सरकार इस चीज के में थोड़ा हट चुकी है पीछे, तो अब अगर किसानों को सरकार से ही डील करना होगा तो क्या वो ये रवैया ले सकते हैं कि हम सिर्फ अपनी मनमानी चाहते हैं और सरकार से भी डील करना चाहते हैं? इससे दो नुकसान है। नुकसान सबसे बड़ा ये है किसानों को कि पब्लिक परसेप्शन में किसानों का ये लगेगा कि देखिए ये ना सरकार की सुनते हैं ना ये सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं और ये अपनी मनमानी चाहते हैं, जो कि किसान आंदोलन के लिए अच्छा नहीं होगा, खासकर इस चीज को देखते हुए कि ये आंदोलन पैन इंडियन नहीं है। सरकार ने जो कवायद चली है पिछले कुछ महीनों में उसमें लग ये रहा है कि किसानों को जो विरोध कर रहे हैं उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। इसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये किसानों के लिए एक परेशानी का सबब है। दूसरा ये है कि वो कितने दिन तक अपनी प्रोटेस्ट को लंबा चलाते रहेंगे, ना सरकार की बात मानेंगे ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। इसको देखते हुए ये भी एक प्रॉब्लम है कि अनएंडिंग नेवर एंडिंग प्रोटेस्ट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं पब्लिक सिंपथी और जो दिल्ली के लोगों को परेशानी, आने जाने में जो असुविधा, माल की आवाजाही में परेशानी, ये सब चीजें भी मुद्दा बनने लग जाएंगी दिनों के बाद।
ये थे इंडिया टुडे टीवी में नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव। गुरुवार को देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति, माघी, बिहू और पोंगल जैसे त्योहार मनाए गए। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर पारंपरिक जश्न के साथ राजनीतिक मजमा भी खूब लगा रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राज्य में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी चेन्नई के कादुमडी मंदिर पहुंचे और पोंगल समारोह का हिस्सा बने। वैसे तो पोंगल तमिलनाडु में हर साल मनाया जाता है, मगर पहली बार राज्य में इस पर्व पर बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगा है। इसके पीछे की वजह समझने के लिए मैंने बात की चेन्नई में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार डी सुरेश कुमार से और उनसे पूछा कि आखिर ये पोंगल पॉलिटिक्स का माजरा है क्या।
इस साल चुनाव का पोंगल है तो हर समय यहाँ पे एक होता है कि जो मेन पोंगल होता है उसके बाद माटू पोंगल जो कि बैलगाड़ी बैलों के लिए रखते हैं वो होता है और फिर कानून पोंगल होता है तीसरे दिन। तो इस बार एक नया इलेक्शन पोंगल भी हो गया, चुनाव का पोंगल भी यहाँ पे लग गया है क्योंकि अभी 3-4 महीने में तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। तो सब पार्टी नेताओं का प्रयास यही है कि वो किसी न किसी तरह यहाँ के जनता के सांस्कृतिक रूप से उनसे मिले जुले रहे। तो इसीलिए एक अनोखी बात है कि पहली बार यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी के नेता पोंगल मनाने आए हैं। वैसे तो यहाँ पे जो रीजनल पार्टी है वो भी पोंगल पब्लिकली नहीं बनाते, अपने अपने घर में नेता बनाते हैं पोंगल। तो इस बार ज्यादा प्रयास रहा है कि किसी न किसी तरह वो जनता से जुड़े रहे और उनके साथ पोंगल मनाए। और आप देखेंगे तो यहाँ पे नड्डा के आने से पहले ही इस बार बीजेपी जो है यहाँ पे नंबर ऊर पोंगल करके एक प्रोग्राम उन्होंने किया है। नंबर ऊर पोंगल माने हमारा गांव का पोंगल। तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के जो स्टेट के नेता है और जो ऑल इंडिया पार्टी इंचार्ज है यहाँ के सीटी ने भी, इन्होंने पिछले एक हफ्ते से भाग लिया है पोंगल में हर एक जगह, मदुरई में, कोयम्बतूर में, चेन्नई के आसपास में। तो ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना है कि ये जो बीजेपी है वो राष्ट्रीय पार्टी है और उनका तमिलनाडु से कुछ मिलाव जुलाव नहीं है। तो ये जो इम्प्रेशन है ये बदलना चाहते हैं। तो इसीलिए इस बार पहले उन्होंने वेट्रीवेल यात्रा किया और अब ये कर रहे हैं नंबर ऊर पोंगल करके। और इसी के प्रयास से अभी यहाँ पे नड्डा आ चुके हैं और ऊपर से कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो तो जल्लीकट्ट के लिए आए थे यहाँ पे। जल्लीकट्ट जो कि बुल टेमिंग स्पोर्ट होता है जहाँ पे बैलों को एक अरीना पे छोड़ के युवा जाके उस बैल को पकड़ के उस पे ऊपर लटकते रहते हैं। और ये जल्लीकट्ट एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको जब कांग्रेस के यूपीए सरकार था तो उस समय जल्लीकट्ट को बैन किया था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जल्लीकट्ट बहुत मशहूर है यहाँ पे पहले से ही और जनता भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो इस बार राहुल गांधी भी जनता का सपोर्ट को लेने के लिए एक भाविक रूप से उन्होंने जल्लीकट्ट में पार्टिसिपेट किया। और इसी रूप से आरएसएस के मोहन भगवत भी यहाँ पे आए और उन्होंने जो यहाँ के झोंपड़ी वाला एरिया है वहां पे जाकर उन्होंने भी पोंगल मनाया।
अच्छा, यूपीए 2 के जमाने में जल्लीकट्टू पर बैन लगा था सुरेश जी, और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी पुरजोर वकालत भी की थी। और कल राहुल गांधी जल्लीकट्टू के आयोजन में पहुंच गए और चूंकि पोंगल फसल की कटाई से जुड़ा हुआ त्यौहार है तो क्या उनके इस दौरे को किसानों के आंदोलन से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए?
जरूर पैरेलली देखा जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने भी पहले से यहाँ पे प्लाउ रैली करके इन्होंने पहले किया था, अभी 2-3 हफ्तों पहले पिछले महीने भी इन्होंने किया था यहाँ पे प्लाउ रैली, यानी कि जो किसान का रैली है प्लाउ, उसको प्रत्येक रूप से उसको सामने करके उन्होंने रखा था। और आज जब राहुल गांधी जल्लीकट्ट में शामिल हुए थे वहां पे स्पेक्टेटर के रूप में, तब भी 2-3 युवाओं ने ब्लैक फ्लैग दिखाया कि ये जो किसान के जो लॉस है, 3 फार्म लॉस है, उसको उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया उसी अरीना में। और राहुल गांधी भी जब रिपोर्टर से उन्होंने बातचीत किया, उन्होंने बोला कि ये जो केंद्रीय सरकार है वो जरूर एक किसान के जो विरुद्ध जो 3 लेजिस्लेशन लेकर आए गए हैं इसको वापस वो जरूर ले चलेंगे क्योंकि इसका देश भर में विरोध हो रहा है, तमिलनाडु में भी इसका विरोध है, तो डेफिनेटली उनको ये विड्रॉ करना पड़ेगा, त्रिकोण बोला है। तो ये वो जल्लीकट्ट के सांस्कृतिक रूप से चुनाव के लिए और ऊपर से ये जो फार्मर्स के किसानों के खिलाफ जो माना जाता है लॉस, उसके बारे में भी उन्होंने बात करने के लिए यहाँ पे आया था। वैसे तमिलनाडु में ज्यादातर विरोध नहीं हुआ है ये फार्म लॉस के खिलाफ, ज्यादातर जैसे आप जाते हैं पूरा का पूरा पंजाब फार्मर्स और उनके आसपास वाले राज्यों से हुआ है, तमिलनाडु के फार्मर्स के साथ तो इतना नहीं हुआ यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे डीएमके जो है, जो कि प्रधान अपोजिशन पार्टी है, वो फार्म लॉस को अपोज कर रहा है, बक्कल निधि मयम कमला हासन का पार्टी भी उसको अपोज कर रहा है, सिर्फ एडीएमके और बीजेपी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब फॉर्मुलास को विरोध कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में एक कनेक्ट हो सकता है।
तो सुरेश जी, तमिलनाडु में कांग्रेस की इस पॉलिटिकल पोस्चरिंग को कैसे देखा जाए? क्या राहुल गांधी अपने अलायंस पार्टनर डीएमके को ये बताना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और सीट शेयरिंग में इस बात का ध्यान रखा जाए?
अभी तो उसके लिए वक्त बहुत कम है उनके पास, तो अभी ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर या पोस्टरिंग करने में इनको बहुत मुश्किल होगा इसमें। वैसे तो जहां तक मेरा जो मेरे सूत्रों ने मेरे को कहा है उसमें से ये पता लगता है कि डीएमके इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देगी। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में उनको 10 सीटें तमिलनाडु और पौंडीचेरी में मिलके दिया था, लेकिन इस बार उनका शायद वो 25 सीट से या 30 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देगी। पिछले जो असेंबली इलेक्शन हुए थे 2016 में, तब कांग्रेस को 41 सीट दिया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 सीटों में उनकी जीत हुई थी। और उसके पहले 2011 इलेक्शन में भी डीएमके अलायंस में कांग्रेस शामिल था, उनको 63 सीट्स दिए गए, लेकिन वो सिर्फ 5 में ही वो कामयाब रहे जीतने में। तो इस बार जो डीएमके के जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है उनका मानना है कि कांग्रेस को ही नहीं बाकी अलायंस को भी कम से कम आप सीट दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, और ज्यादातर सीटों में डीएमके के राइजिंग सिंबल को ही वहां पे चुनाव में लड़ना है, यही इनका मामला है। तो शायद कांग्रेस भी इसमें कुछ पोस्टरिंग करके ज्यादा सीट इस बार नहीं पा सकती, ये मेरा इरादा है।
ये थे चेन्नई में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार डी सुरेश कुमार।
आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।
और साल 2020 में अर्थव्यवस्था और बाजार पर कोरोना का असर चौतरफा दिखा। उसी में शामिल है पहले से मंदी झेल रहा ऑटो सेक्टर, कोरोना की वजह से गाड़ियों की खरीद और बिक्री पर भी असर दिखा। इसे लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों की बॉडी सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने नए आंकड़े जारी किए हैं। इनके मुताबिक 2019 की तुलना में पिछले साल 5 लाख कम गाड़ियां बिकीं। ये गिरावट लगभग 18% है। हालांकि बीते दिसंबर में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में करीब 14% की बढ़त रही। इसके अलावा और भी कई आंकड़े हैं, जैसे टू व्हीलर्स व्हीकल की खरीद में बढ़ोतरी दिखी, लेकिन थ्री व्हीलर्स की सेल में जबरदस्त गिरावट रही। तो ये आंकड़े ऑटो इंडस्ट्री को लेकर क्या तस्वीर बयां करते हैं, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से।
जी देखिए, ऑटो सेक्टर के ऊपर बात करने से पहले हमें ये बिल्कुल समझना जरूरी है कि ऑटो सेक्टर देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो कंजम्पशन पैटर्न है, वो कई चीजों का एक साथ ऐसा संकेत देता है जो आपकी अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर मानी जा सकती है। हम देखते हैं कि जैसे ही कार सेल्स के नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हाँ, अगर टू व्हीलर की सेल बढ़ी है, ट्रैक्टर की सेल बढ़ी है, रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है। हम मानते हैं कि अगर कार की सेल्स अच्छी हो रही है तो लोग कंजम्पशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, खपत बढ़ रही है, जो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए अगर कारों की सेल या टू व्हीलर की सेल पर जब भी हम बात करें, हमें ये समझना होगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में करीब करीब 49-50% की हिस्सेदारी रखती है। यानी ऑटो सेक्टर में कुछ भी अगर घटता बढ़ता है तो केवल ऑटो सेक्टर नहीं बल्कि आपकी पूरी इकोनॉमी, जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, रूरल इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी, सबका कहीं ना कहीं संकेत देती है। अब हम आते हैं नंबर्स पे। नंबर्स ये आए हैं जो बताते हैं कि 2020 में करीब 18% गाड़ियां कम बिकी 2019 के मुकाबले, और ये जो बिक्री है पिछले 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। देखिए, लाजमी है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इसके पीछे लॉजिक है कि ऐसा क्यों नहीं बिका। हम सबको पता है कि बीता साल जो था वो कोविड की महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह थम गई थी, लॉकडाउन लगे थे, 3-4 महीने बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई गतिविधि नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से कार का सेल्स कम होना लाजमी था। एक फैक्टर आया था, ये कहा गया था कि हाँ, पेंट अप डिमांड है, फेस्टिवल सीजन में बहुत तेजी से गाड़ियां बिकेंगी, पिछली डिमांड सारी कवर कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओवरऑल अगर आप देखें तो वो डेंट 18% का दिखता है। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत यह भी है कि कोविड के दौरान जिन लोगों की नौकरियां गई, जिन लोगों की आय टूटी, जिन लोगों की आय कम हुई, सैलरीज कट हुए, बहुत सारे स्टार्टअप से जो लोग निकाले गए, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स थी या बहुत सारे ऐसे एमएसएमई थे जो इस कोविड की जो आंधी थी इसमें उड़ गए, बह गए, कुछ भी आप कह लीजिए। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो जॉब्स कट इतना बड़ा हुआ, बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हुए या उनके आय कम हुई, उस वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है इस ऑटो सेल्स के नंबर पर। और ये भी एक बड़ी समझने वाली बात है कि लोगों ने उसके बाद पैसे को होल्ड करना शुरू किया, क्योंकि कोविड कब तक चलेगा, वैक्सीन की कोई खबर नहीं थी, ये क्राइसिस कितनी बड़ी चलने वाली है, कितनी लंबी समय तक चलने वाली है, लोगों की सैलरीज कब रिस्टोर होंगी, रोजगार कब उन्हें मिलेगा, मिल भी गया, आ भी गई थी सैलरी, तब भी खर्च करने से पहले नहीं एक इमरजेंसी फंड रखो, एक रेनी डेज के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, वो होल्डिंग की वजह से भी कहीं ना कहीं ऑटो की जो बिक्री थी उस पर असर पड़ा। तो यही 3-4-5 कारण थे जिनकी वजह से 2020 में ये नंबर्स आपको कम देखने को मिला है।
अच्छा शुभम जी, एक डेटा को बारीकी से देखने पर यह भी दिखता है कि दिसंबर में जो गाड़ियों का सेल रहा वो थोड़ा ही सही, लेकिन दिसंबर 2019 से अधिक रहा। लंबे समय से मंदी झेल रहे ऑटो सेक्टर के लिए थोड़े उम्मीद जगाने वाले आंकड़े रहे, तो कम से कम दिसंबर में तो हम प्री कोरोना लेवल पर पहुंचे।
देखिए, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ये जो डेटा है ये सियाम का डेटा, ये होलसेल डेटा है। होलसेल का मतलब ये है कि ये फैक्ट्रियों से निकल के और डीलरशिप तक पहुंचने वाली गाड़ियों का नंबर है। फैक्ट्री से गाड़ी निकलती है, सियाम उस नंबर को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद एक नंबर आता है फाडा का नंबर, जो नंबर एक्चुअल सेल का नंबर होता है, जो ये हमें बताता है कि वाकई कितनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन आरटीओ में हुए। आरटीओ में रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि गाड़ी किसी ना किसी ने खरीद ली। देखिए, 2-3 चीजें हमें यहाँ समझनी चाहिए। दिसंबर में नंबर क्यों बढ़े, इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह जो है वो ये है कि एक साल चेंज होने से ठीक पहले बहुत सारी कंपनीज ये घोषणा करती हैं कि जनवरी में उनके रेट्स बढ़ जाएंगे, गाड़ियां महंगी होंगी, तो उससे पहले एक ईयर एंड बाइंग आती है, तमाम ऑफर्स दिए जाते हैं कंपनियों की ओर से, डीलर्स की ओर से, जिसके बाद ये सेल्स देखने को मिलती है हर साल। दूसरी एक बड़ी बात ये है कि अब लॉकडाउन पूरी तरह खुल चुका है और वैक्सीन की अब बात आ गई है सामने, शनिवार से देश में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी, तो ये एक भरोसा बाजार में लौटा है। अब लोगों को दिख रहा है कि नहीं, अब हम एक जो लंबी गहरी काली सुरंग थी उसके किनारे पर पहुंच गए हैं, और अब शायद जब वैक्सीन आ जाएंगी और चीजें लौट आएंगी तो बाजार में भरोसा लौट रहा है। बाजार में भरोसा लौटने की ये बाइंग आप इसको मान सकते हैं, ईयर एंड की बाइंग आप इसको मान सकते हैं। हमें देखने की बात जरूरत यह है कि फाडा का क्या जो नंबर आता है वो भी इतना ही बड़े मार्जिन, इतनी ही ग्रोथ दिखाता है, और क्या ये ग्रोथ अगले 2 या 3 महीने कंटिन्यू रहती है। अगर ये ग्रोथ 2 या 3 महीने कंटिन्यू रहती है तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी के लिए, बाजार के लिए, ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा संकेत है ऑटो सेक्टर में बाइंग का लौटना।
ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर। और अब वक्त है आज के अखबार का।
आज के अखबार।
आज के अखबार।
प्रतीक वाघमारे रोज सुबह अखबारों की सुर्खियां लाते हैं, देश के अखबारों से हम शुरू किया करते हैं। तो बताइए प्रतीक, क्या कह रहे हैं आज देश के अखबार?
तो अमन, आज ठंड इतनी है कि सबसे पहला ध्यान मेरा एक तस्वीर की तरफ ही गया। श्रीनगर की तस्वीर है, दैनिक भास्कर में छपी है, और ये डल झील की तस्वीर है जो पूरी तरीके से जम चुकी है, और इस पर लोग क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, और एक क्रिकेट का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हालांकि श्रीनगर के जो डिप्टी कमिश्नर है वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये सलाह दी कि ये सतह पर ना चले, क्योंकि ये कभी भी टूट सकती है। और श्रीनगर में -8.4 डिग्रीज है, ये तस्वीर के साथ छपा है। 25 साल का रिकॉर्ड टूटा, डल झील क्रिकेट का मैदान बनी।
तो एक खबर मैं आपको बताता हूं प्रतीक, यह है दैनिक जागरण अखबार में छपी, और हेडिंग है रिश्वत लेने पर सीबीआई ने अपने 4 कर्मियों के खिलाफ दर्ज किया केस। तो खबर का विस्तार कुछ यूं है प्रतीक कि सीबीआई ने अपने 4 कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। तो मामला ये है कि बैंक धोखाधड़ी की कुछ आरोपित कंपनियां थीं, उनके खिलाफ जांच चल रही थी और उस जांच को प्रभावित करने के लिए इन कर्मचारियों ने रिश्वत ली थी। तो गुरुवार को जब सीबीआई ने गाजियाबाद स्थित अपनी प्रशिक्षण अकादमी और 13 अन्य जगहों पर छापेमारी की तो इन लोगों के खिलाफ कुछ सबूत मिले और फिर मामला चलाया गया।
और भास्कर में ही छपा है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से हटे भूपिंदर सिंह मान। जो कमेटी बनी थी जिसमें 4 सदस्य थे, उसमें भूपिंदर सिंह मान ने अपने आप को उस कमेटी से अलग कर लिया और ये कहा कि वो पूरी तरीके से किसान के साथ खड़े हैं। हालांकि कमेटी के जो दूसरे सदस्य हैं उन्होंने कहा कि वो किसानों से मिलेंगे। और दैनिक जागरण में एक सुर्खी छपी है, सरकार और किसानों के बीच आज फिर होगी बातचीत। तो 10वें दौर की वार्ता किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली है। हमने इसे आज का दिन में भी विस्तार से कवर किया है, ये भी ज़रूर सुनना चाहिए। साथ ही भास्कर में ये खबर है कि फ़ोन पर अमिताभ की कॉलर ट्यून कल से बंद। तो जो हम फ़ोन करने के पहले अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनते हैं जिसमें वो कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरतने की सलाह देते हैं, अब वो जो कॉलर ट्यून है वो कल से बंद होने जा रही है क्योंकि कल से अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उस पर एक नई कॉलर ट्यून कल से आएगी जो जसलीन भल्ला की आवाज़ में होगी। और हाईकोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर हुई कि अब बच्चन की जो आवाज़ वाली ट्यून है उसे हटाई जाए।
जी प्रतीक, तो अब मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ जनसत्ता अखबार से। पहले ही पन्ने पर यह खबर है और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी हुई है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने जा रहा है जिन्हें लेकर देश भर में चर्चा है। और कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप का आपकी प्राइवेसी में अब दखल और कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप का आपकी प्राइवेसी में दखल नई पॉलिसी के बाद और बढ़ जाएगा। तो इसे लेकर अब आईटी मिनिस्ट्री में समीक्षा चल रही है और अधिकारियों का कहना यह है कि देखा जाएगा किस तरह व्हाट्सएप लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है और अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ किस तरह से कानून के तहत कार्रवाई की जाए। जी प्रतीक, और ये तो हुई देश के अखबारों की बात, बताइए क्या कहते हैं विदेश के अखबार।
और विदेशी अखबारों की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, मुरकोवस्की सिग्नल्स शी इज ओपन टू कन्विक्टिंग ट्रंप एज द टाइमिंग ऑफ द सीनेट इम्पीचमेंट ट्रायल रिमेन्स अनक्लियर। तो रिपब्लिकन लीडर सेनेटर लीसा मुरकोस्की ने कहा है कि सेनेट में भी अगर ये ट्रंप का इम्पीचमेंट होता है तो वो उसमें भी समर्थन देगी और जिस तरीके से हाउस में इम्पीच किया गया ट्रंप को उन्होंने इसे अप्रोप्रिएट बताया है। इसके अलावा एक और सुर्खी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ही छपा है, अ WHO टीम इज इन चाइना टू इन्वेस्टिगेट द वायरस, इट्स ऑलरेडी मीटिंग ऑब्स्टेकल्स। WHO की टीम जो वुहान गई है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो वायरस है वो कैसे ह्यूमंस तक पहुंचा है, जो कि सबसे पहले चाइना में ही वायरस मिला था, लेकिन इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से पहले, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये बताया गया कि जैसे ही सिंगापुर में जब ये पहुँचे WHO की टीम, जिसमें से 2 मेम्बर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें तो सिंगापुर ही रोक लिया गया और जो बची हुई टीम जब चाइना पहुँची उनमें से भी अधिकतर मेंबर्स को क्वारंटीन कर दिया गया है। और अब तक जो साल भर से ये ज़्यादा हो गया है जब वायरस चाइना में मिला था, लेकिन अब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो पाई है। लगभग 13 एक्सपर्ट्स हैं WHO के जिन्हें 2 हफ्तों के लिए वुहान में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। तो यही अमन विदेशी अखबारों की सुर्खियाँ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने देश विदेश के तमाम अखबारों से ये खबरें हम तक पहुँचाई।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
चलिए अब वक्त हो गया है आपको 15 जनवरी का इतिहास बताया जाए। तो 1934 में आज ही के दिन बिहार में एक भीषण भूकंप आया था, इसमें 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1949 में आज ही के दिन KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे और तब से ही आज के दिन को सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1965 में आज ही के दिन भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी और आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, वे 65 साल की हो गई हैं। और नेहरू और शास्त्री जी के निधन के बाद 13 दिनों तक कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा की आज पुण्यतिथि है। 1998 में उनका निधन हुआ था। तो इसी के साथ आज का दिन में बस इतना ही। हमसे अगर कुछ कहना चाहते हैं यानी आपका कोई सुझाव है, शिकायत है, तो radio@aajtak.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं और आपके ईमेल को हम अपने शो में भी शामिल करेंगे। अभी के लिए शो के प्रोड्यूसर ऋतुराज और साउंड इंजीनियर सचिन द्विवेदी समेत मुझे यानी अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।
दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर, खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।